Oh, my God. प्रेम से कह से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप माया प्रधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। मथुरा श्रीमद भागवतम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। वृंदावन तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ब्रिटिश ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑल ग्लोरियस टू असेंबली श्री गुरु श्री
मैत्रेय उवाच
स्वामी राजा
ऋतुपुत्र
ऋतुस्रवा यवीयोभ्य ददात् कष्ठा भातृभ्य भातृवत्स जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी के विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण के पास मिलती है चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। पिछले अध्याय में महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र का वर्णन कर चुकने के बाद मैत्रेय मुनि ने पृथु की वंश परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन प्रारंभ किया है। महाराज पृथु की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी को पृथ्वी का राजा हुआ। वह अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता था, अतः वह चाहता था कि संसार के विभिन्न दिशाओं पर शासन करे। अनादिकाल से नियम है कि राजा के मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। तो पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था, तो राजा पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ही सम्राट बने थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विश्व के विभिन्न दिशाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुर्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहरिष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामहं ददाति स्वधान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीरूपपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपां नाजगदातं सह गणरघुनाथानुकं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं प्रयञ्जनासहितं कृष्णाय चैतन्यदेवम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीमद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे विजिताश्वधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुश्रव यवीयभ्यो ददातस्थ भातृभ्य भातृवत्स। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजितास्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अधिक चाहता था। तो पिछले अध्याय में से हम किन की बारे में श्रवण करके आ रहे थे? महाराज पुत्र। महाराज पुत्र के पिताजी कौन थे? तो उनके शरीर को बाहुओं को मंथन करके ही पुत्र महाराज के जन्म हुआ था, उत्पन्न हुआ था, पुत्र महाराज उत्पन्न हुए थे। तो पुत्र महाराज अकेले ही थे, इसलिए उन्होंने समग्र विश्व के शासन करते थे। इनको आदिराज भी कहते थे। किनको? पुत्र महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। मैत्रेय मुनि पृथु महाराज के बारे में वर्णन करने के प्रांत उनके आगे उनकी पुत्र तथा उनके पुत्रों की और उनके वंशों की भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा था कि पृथु महाराज के अन्य पुत्र में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था? विजितास्व। इनके दूसरे नाम क्या? आगे पढ़ेंगे। दूसरे नाम भी अंतर्ध्यान। क्या उनके नाम था? ये दोनों नाम उनके क्यों हुआ था? विजितास्व नाम क्यों हुआ? विजितास्व श्लोक में सबसे पहला शब्द विजितास्व, विजितास्व अधिराजा, विजितास्व अधिराजा था, सम्राट, समग्र विश्व के सम्राट थे। तो उनके नाम विजितास्व क्यों हुआ? असमध्य यज्ञ महाराज पृथु जब संपादन कर रहे थे, जो अंतिम यज्ञ था, कितने यज्ञ कर रहे थे? 100 यज्ञ करने के संकल्प लिए थे, तो 99 कर लिए। उन्होंने अंतिम यज्ञ जो 100 नंबर के यज्ञ पूरा होने वाला था, तो उसमें इंद्र बार बार आकर घोड़ा को चोरी करके लेके जाता था। किस लिए घोड़ा चोरी करता था? किसलिए यज्ञ पुराना हो? कि इंद्र बनने की एक क्वालिफिकेशन है। जैसे पृथ्वी में, पृथ्वी धरातल पर जो 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लेगा, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या अर्थ कि इंद्र बने? अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ है कि वो डिक्लेयर करना कि मैं समग्र विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट हूं। घोड़े की ऐसा यहाँ पर सिर पर तस्वीर में यहाँ पत्र लिखा कर उसको छोड़ा जाता है। पत्र में क्या लिखा रहता कि मैं समग्र विश्व की एक छत्राधिपति सम्राट हूं, यदि कोई इसको स्वीकार नहीं करता तो मेरे घोड़ा को रोक ले, मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करा करके वो सम्राट रूप में घोषणा करते थे। लेकिन कलयुग में अश्वमेध यज्ञ है, 5 चीज कलयुग में वर्जन की गई। क्या क्या? अश्वमेधम, गोवालंबम, कौपौत्रिकम, देवरण सुखोत्पत्ति, कौ पंच विवर्धित। क्या क्या? अश्वमेधम, गोवालंबम, क्या बोल, जोर से बोलो। संन्यासम, कौपौत्रिकम, देवरण सतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जयत। इस कलयुग में 5 चीज को वर्जन की गई। इसमें सबसे पहला है अश्वमेध यज्ञ। एक तो मैंने पशुओं को बलि देने की दृष्टि से इसको मना किया गया, लेकिन दूसरे दृष्टि से कि इस संसार में कलयुग में कोई योग्य नहीं है। क्या करने के लिए? अश्वमेध यज्ञ के लिए। क्योंकि कौन सम्राट रूप में घोषणा कर सकता? अभी कोई घोषणा कर सकता पृथ्वी की मैं एक छत्राधिपति सम्राट, चाहे वो ओबामा हो अमेरिका के, बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कह सकता कि मैं पृथ्वी के समग्र पृथ्वी के एकमात्र एक छत्राधिपति शासक हूँ? कह सकता? नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता है। ये सब जानते हैं, उनका लिमिटेशन है। अभी सबके पास क्या है? बॉम्ब है, फेंक देंगे बस, सब समाप्त करेंगे। एक छोटा सा कंट्री भी चैलेंज देता है अमेरिका को, मुस्लिम कंट्रीज होते छोटे छोटे कंट्री, इराक, ईरान पर वियतनाम भी चैलेंज दे रहा था, किसको? अमेरिका को, इतने बड़े कंट्री। हमारे को भारत का इतनी पॉपुलेशन नहीं, लेकिन हमको भी चैलेंज देने वाला कौन है? पाकिस्तान, छोटा कंट्री। क्योंकि सबके पास आज परमाणु है, परमाणु शक्ति है। यहाँ तक ये लोग सोचते कि अरे क्या है भगवान, ये भारत जो शास्त्र में लिखा गया हिंदुओं के शास्त्र में कि कलयुग का अंत में कौन कौन आएगा, कलि के भगवान आएंगे और 12 हाथ तलवार लेकर घोड़े की पीठ में चढ़कर सभी मेलक्षों को संहार करेंगे। बोले क्या कैसे कैसे हो सकता है, ये तो कहानियां है, क्योंकि हम हमको पता नहीं कि हमारे पास एक्टर माने अभी एटम बम है। राजीव गांधी इलेक्शन में वहां पर क्या हो? स्पीच दे रहा था मद्रास में, इसके फूल माला में फूल हारा नहीं रख दी थे, बस उड़ गया। अरे ये क्या है, ये घोड़े के पीठ में आएगा तलवार लेकर, हम कहेंगे इसके ऊपर बम। अरे पता नहीं कि भगवान क्या होते, भगवान कैसे होते। एक राक्षस महाभारत युद्ध में प्रकट हो गया था, ये पृथ्वी लोक की नहीं था, पाताल लोक से आया था, क्या घटोत्कच। वो महाभारत युद्ध में इस सब जितने अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकते थे, कुछ होता था उसका? सब खा जाता, बाद में तोड़ के सब फेंकते थे। तो भगवान जब आएंगे तो उनको पता नहीं कि भगवान का शरीर ऐसे पांच भूत से नहीं बनाया होता है, सच्चिदानंद विग्रह, उनके ऊपर कैसे कुछ फेंकने से कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान को साधारण मनुष्य के साथ तोड़ना करते हैं आजकल के लोग, तो जो वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम बड़ा इंटेलिजेंट है, ये सब हिंदू शास्त्र जो है सब मिथोलॉजी है। तो इस प्रकार लेकिन एक कहने का है कि इस कलयुग में कोई भी अपने को सम्राट नहीं कह सकता, पूरा पूरे विश्व के सम्राट कहकर सही अशोक सिर में का लेटर लेकर नहीं छोड़ सकता, सबको भय है, संभव नहीं। गोविंद यज्ञ भी इस कलयुग में मना है, क्योंकि गाय को यज्ञ में बलि देना मना है, क्योंकि प्राचीन काल में पशुओं को काटते थे तो सबके सामने खाली वो उन्नत शरीर को प्राप्त करके ही, दिव्य शरीर प्राप्त करके, देवताओं के शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में चले जाता है। अभी कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है, कलयुग में यज्ञ वर्जित है, कलयुग का युग धर्म नहीं है। कलयुग में कौन सा युग धर्म क्या है? केवल नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। तो अन्य युग में वो यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ में जो बलि को पशु को बलि देते थे तो दिव्य शरीर प्राप्त करके वो स्वर्ग में चले जाता था, सबके सामने देवताओं के शरीर धारण कर चले जाता था ऊपर। तो आजकल कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जो यज्ञ होता था, यज्ञ अग्नि को जगाने के लिए, अग्नि को यज्ञ में को जलाने प्रारंभ करने के लिए, तो ये मच्छबस नहीं लगाते थे, मच्छिस का ठीक या लाइटर, क्या करते थे? मंत्र पढ़ के उच्चारण करते थे, अग्नि देव वहां प्रकट होते थे। कोई ब्राह्मण योग्य है कि नहीं यज्ञ करने के लिए, तो पढ़ते ही से परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ करने के लिए आए, तो अग्नि के तुमको मैचबॉक्स नहीं देंगे कि लाइटर नहीं देंगे, तो मंत्र उच्चारण करके यज्ञ अग्नि को बोला, जो अग्नि प्रकट होंगे तो आपको पता लगेगा तुम ठीक योग्य ब्राह्मण हो यज्ञ करने के लिए। कोई है ऐसे? तो यज्ञ ही मना है, तो वो हत्या कैसे, वो गाय को कैसे काटेंगे यज्ञ में? गाय को काटेंगे तो फिर इसको फिर उन्नत शरीर देवताओं में शरीर प्रदान करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान ने बुद्ध अवतार में आकर बुद्ध शरीर ये सब अधीत बुद्ध शरीर बुद्ध देव आकर मना कर दिए। पशु हत्या अहिंसा परम धर्म, उन्होंने भगवान मैंने सत्य वैसे अवतार भगवान की, तो उन्होंने आकर कहे कि नहीं अहिंसा करो, पशु बलि नहीं, बड़ी नहीं। असा अश्वमेधम गोबालंभम संन्यासम, इस कलयुग में संन्यास लेना मना है। तो हमारे सारे आचार्य जो मायावादी आचार्य जो शंकराचार्य भी संन्यास लिए हैं, कितने साल में शंकराचार्य कितने साल में संन्यास लिए? 8 साल में। माधवाचार्य 12 साल में। रामानुज आचार्य भी गृहस्थ आश्रम में थे, पति ने पत्नी को भेज दिया अपने ससुर घर में और संन्यास ले लिए, खुद आए परदराजम को साखी रख के तीन वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य माधवाचार्य निम्बार्क स्वामी विष्णु स्वामी ये सारे सन्यासी हैं। इसको फिर कैसे लोग सन्यासी लिए? आचार्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, फिर माधवेंद्रपुरी ने सन्यासी थे, ईश्वरपुरी भी सन्यासी थे, तो कैसे करके मना किया गया सन्यास नहीं लेना पड़े जो ये सारे सन्यासी थे। तो शास्त्र कहता कि सन्यास इसलिए वर्जित है कि कर्म के लिए जो सो लोगों का लोग हितकर कार्य करने के लिए संसार त्याग के क्या करते, हॉस्टल तो नहीं, वो स्कूल खोलना, क्या दातव्य चिकित्सालय खोलना, जनहितकर कार्य समाज के कार्य करने के लिए ऐसे ही जो करते हैं कुछ लोग, ये वर्जित है कर्म संन्यास, जिसमें इंद्रिय तो ही केवल भावना है, इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं। तो इस प्रकार संन्यास कलयुग में ऐसे ही संन्यास लेकर सब ऐसे काम करेंगे, अन्य युग में जो संन्यास लेते तो भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल संन्यास लेकर, जैसे पृथ्वी महाराज घर त्याग के बाद जितने भी सब घर संसार त्याग कर जो संन्यास जाते थे, फिर वो आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए करते थे। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल कुछ नाम जस लेने के लिए कर्म संन्यास अर्थात कर्म करने के लिए जो संन्यास लेते हैं उसको वर्जित है, कर्म संन्यास तथा ज्ञान संन्यास, ज्ञान संन्यास होता है मायावादी संन्यास जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते। कलयुग में सब सन्यासी जो बनते संन्यास लिए क्या चाहते, कहां लीन होना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये दो प्रकार के संन्यास वर्जित है। लेकिन जो सब कुछ त्याग कर काय मनो वाक्य में भगवान की सेवा के लिए संसार को त्यागता है उसको मना नहीं किया गया, इसलिए वैष्णवाचार्य लोग ने संन्यास लेकर जीवन को संपूर्ण रूप में भगवत सेवा में नियोजित किया। इसलिए भक्ति संन्यास की वर्जित नहीं है। कौन सा संन्यास वर्जित है? कर्म संन्यास, जो इंद्रिय तृप्ति कर्म है इंद्रिय तृप्ति के लिए, पूजा मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए संसार में, और दूसरा ज्ञान संन्यास जो कि साजुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए जो मायावादी जो संन्यास लेते, एक दंड संन्यास, अब्रह्मस्मि, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं, एक है। लेकिन त्रिदंड संन्यास लेते हैं, तीन दंड लेते हैं काय मनो और वाक्य में भगवान की चरण सेवा में समर्पित होने के लिए, उसके साथ में जीव दंड रहता तो उनको वो ये सप्ताह याद रखने के लिए कि मैं जीवात्मा हूं, मैं भगवान नहीं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसी को संपूर्ण रूप में जीवन में निभाने के लिए, संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए, तो वैष्णव आचार्य गण इसलिए त्रिदंड संन्यास, रामानुजाचार्य माधवाचार्य विष्णु स्वामी निम्बार्क तो माधवेन्द्रपुरी ईश्वरपुरी गौरांग महाप्रभु हमारा परंपरा में और के भक्तियां सुर ठाकुर प्रभुपाद सब सन्यासी बनकर भगवत सेवा में संपूर्ण रूप में जो को नियोजित किया। तो इसलिए कलयुग में ये मना है सन्यासन पड़ पौत्रिकम पितृ श्राद्ध में मांस ने जीवों को काट के विशेष रूप हिरण के मांस पितरों को चढ़ाते थे, ये भी कलयुग में मना है। और देवरण सुतोत्पत्ति, जैसे व्यासदेव जी ने अपने भाइयों की पत्नी की गर्भ में संतान को उत्पन्न किए थे, इसको अंबा अंबालिका की गर्भ में, धृतराष्ट्र पांडु और विदुर दासी की गर्भ में भी विदुर को जन्म लिए थे। तो ऐसे करना इस कलयुग में मना है, ये अभी तो अवैध संग माना जाएगा, क्योंकि फिर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य में लग जाएंगे लोग। लेकिन व्यासदेव जी ने जो संतान उत्पन्न किए थे वो इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर नहीं, केवल माता जी को प्रतिश्रुति दिए थे पहले कि माता जी जब तुम बोलाओगे, तुम्हारे कोई आवश्यकता पड़ोगे, मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो माता के कहने पर भी मुझे वचन दिए थे उसी का रक्षा करने के लिए, कृष्ण भावना भावी संतान को उत्पन्न करने के लिए समग्र जो हस्तिनापुर के सिंहासन में एक योग्य शासक को प्रतिष्ठित करने के लिए इनकी मन में कोई इंद्रिय तृप्ति भावना नहीं था। तो इसलिए कलयुग में ये पांचों चीज को वर्जित किया गया। लेकिन विजितास्व इतने ने वो सत्य युग में सक्षम राजा थे कि उन्होंने अपने कहे थे कि पुत्र पृथ्वी राजा के मध्य प्रभुपाद लिखते पृथ्वी राजा के समान ये भी जसोस्वी थे, जैसे महाराज पुत्र जसोस्वी थे इसी प्रकार इनकी भी जस सर्वत्र फैला हुआ था। क्योंकि उन्होंने इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी युद्ध में परास्त करने में सक्षम थे, क्योंकि पिताजी की जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ होता था और घोड़ा को बार बार इंद्र भयभीत होकर चुरा लेता था कि सयज्ञ इनसे संपन्न हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, उसका पोस्ट चला जाएगा। लेकिन ये इंद्र ने सन्यासी की वेश धारण करके आए, साधु वेश धारण करके घोड़ा को बार बार चोरी करता था लेकिन चले जाता था, बीतता सो जाता था, फिर साधु देखकर कुछ बुद्ध ने छोड़ के अच्छा, लेकिन बार बार उन्होंने देवता लोग ने कहा कि नहीं है साधु नहीं है, ये नकली साधु है, ये रावण का फॉलोअर है, इसको मार। तो बीजदास में फिर भाग किया जाता था उसके पीछे, तो देखा बीजदास फिर पीछा करता था, जो इंद्र अंतर्ध्यान होकर अंतर्ध्यान हो जाता है, उसको ये पता था कि ये सिद्धि देवताओं को पता है, अंतर्ध्यान हो जाता, तो फिर उसको छोड़ देता था बीजदास। तो क्या करेगा, ऐसे इंद्र को विजय करने के कारण फिर घोड़ा को लेकर आता था, युद्ध में इंद्र को पराजय करने में सक्षमता होने के कारण इसको क्या कहते विजितासु, जो घोड़ा को इंद्र से जीत कर लेकर आया था, चिन्ह कर लेके आया था, तो इसलिए इसका नाम विजितासु। बाद में इसकी जो इंद्र को मारना चाहता था मार सकते थे जान से है? लेकिन इंद्र को मारा नहीं, इसलिए इंद्र ने प्रसन्न होकर उसको वो कला सिखाया था। कौन सा कला? अंतर्ध्यान कैसे हो जाना, नहीं खड़ा तुरंत अंतर्ध्यान हो जाए, सिद्धियां एक सिद्धि है तो सिद्धि उनको सिखाया था, इसलिए उनकी आगे आई, उनके एक नाम भी अंतर्ध्यान था, अंतर्ध्यान की कला उन्होंने सिखा था। तो इसलिए श्लोक के ये श्लोक मैत्रेय जी ने कह रहे, किसको कह रहे, मैत्रेय जी के जो मैत्रेय हुआ मैत्रेय किसको कहते श्लोक, मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है, भागवत के मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। मैत्रेय मुनि विदुर जी हरिद्वार के पास गंगा के किनारे मिले थे और वहां पर उनको जो प्रश्न उत्तर चल रहा था उसी का चर्चा चल रहा अभी तक। मैत्रेय मुनि ने भी जो बोलते वो भी अपने मन से नहीं कहे, वो भी कहते कि इसको मैं सुना था, कहां से सुनते, भगवान से सुने। उद्धव और मैत्रेय दोनों उपस्थित थे, भगवान जब अंतिम समय में नित्यलाय में प्रवेश कर रहे थे दोनों व्यक्ति उनके चरण में बैठे, उनके चरण में थे, एक उद्धव दूसरा मैत्रेय। बोले तो विदुर जी ने उद्धव को मिले थे लेकिन उद्धव ने कहे कि देखिए कि विदुर जी वयोज्येष्ठ है, उनके पितृतुल्य है, इसलिए इनको शास्त्र कहे के उपदेश करना हुआ जो अच्छा मैं ठीक नहीं समझी, ये मर्यादा लंघन करना ठीक नहीं है, इसलिए उद्धव ने इनको भेज दिया, कहा विदुर जी को भेज दिया मैत्रेय के पास। ये भगवान के पास में मैं भी था और मेरे से अला और एक व्यक्ति भी सुना था, आप उनके पास जाइए। इसलिए मैत्रेय मुनि के पास जाकर विदुर जी ने हरिद्वार में मिले और हरिद्वार में गंगा के किनारे पर दोनों बैठकर बातचीत चल रहा, और जो बातचीत हो रहा था उसको हम अभी श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैत्रेय वाचन। तो विजितास्व महाराज पृथ्वी के बड़े पुत्र थे और उन्होंने इंद्र को भी युद्ध में पराजय करने की शक्ति रखे थे, था उनके पास, बड़े प्रसिद्ध राजा थे, इसलिए अधिराजा थे, अधिराजा का अर्थ सम्राट, राजा छोटे छोटे राजा छोटे छोटे राज्य के, लेकिन ये पूरे विश्व के सम्राट, इसलिए अधिराजा आशी ये अधिराजा थे। और कौन था इनके परिचय क्या था, पृथु पुत्र, महाराज पृथु के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। और पृथु श्रवा महान कार्य करने वाली, पृथु के समान कार्य करने में सक्षम होने के कारण उसको पृथु श्रवा कहा गया। महाराज पृथु जैसे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, आदिराज उनको कहा जाता था, इसी प्रकार पृथ्वी के पृथु महाराज के समान प्रभावशाली और योग्य व्यक्ति होने के कारण इनको भी पृथु श्रवा अर्थात महान कार्य करने में समर्थ थे पृथ्वी के समान। इसी प्रकार उनके और एक गुण था कि विजितासु की जबी अभ्यो का था छोटे भाइयों के प्रति आदर, छोटे भाइयों के प्रति बड़े स्नेही थे, इसलिए आगे शब्द भी आता है कि भाइयों को भातृवत्स, भाइयों को प्रति अत्यंत वत्सल थे, अत्यंत स्नेही थे, इसलिए उन्होंने काष्ठा विभिन्न दिशाएं राज्य के सब छोटे छोटे भाई पर संपूर्ण राज्य को सम्राट होने पर भी भाइयों दुखी हो जाएंगे, इसलिए भाइयों को भी राज्य का कुछ अंश दे दिए थे शासन करने के लिए, अन्य भाइयों को भी कुछ कुछ अंश देकर इनको शासन के लिए दे दिया था। तो प्रभुपाद ने लिखते कि इस प्रकार जो महाराज युधिष्ठिर भी शासन करते थे, उन्होंने भी यदि वो हस्तिनापुर के सम्राट थे लेकिन अपने सब भाइयों के प्रति स्नेही होने के कारण उन्होंने अन्य अन्य पांडवों को भी शासन करने के लिए अन्य अन्य राज्य के अधिकार दिए थे, छोटे छोटे राज्यों में, तो उनको भी वहां शासन करने के लिए अधिकार था। भगवान रामचंद्र जी ने भी जो शासन करते थे उन्होंने भी अपने भाइयों को सब शासन के अधिकार दिए थे। ये मथुरा किसके अंदर में था? अयोध्या। महाराज रामचंद्र जी के राजधानी तो अयोध्या था, वहां बैठते थे, लेकिन मथुरा को शासन करने के लिए किसको दिए थे? इस प्रकार अन्य अन्य भाइयों को उन्होंने भी महाराज रामचंद्र जी ने भी सब अन्य अन्य स्थान दिया था। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधारण वैदिक रीति है कि जो पिताजी की राजा की जब मृत्यु हो जाती है, मित्रला में प्रवेश कर जाता है राजा, तो उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र है उसी को ही साम्राज्य के सम्राट बनाया जाता है। तो सब समय से होता उसे इसमें व्यतिक्रम होता नहीं, ऐसा ही सब समय होता है। महाराज जजाति, भागवत में जजाति की कथा है, महाराज जजाति ही जजाति, इनका दो एक पत्नी थी, कौन? देवजानी। देवजानी शर्मिष्ठा तो राजपुत्र थी लेकिन वो उसको दासी बन के आई थी। लेकिन जब महाराज जजाति जब शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित भी थे, शर्मिष्ठा कांत में उनको भी पुत्र की इच्छा, जब पहले तो देवजानी के पुत्र हो गए तो उसको भी पुत्र की इच्छा हुई, वो राजकन्या थी और महाराज जजाति उसको भी चाहते थे, इसलिए एकांत उनके साथ संभोग करने के कारण उसका भी पुत्र हो गया। जो राजा से उसको पुत्र प्राप्त हुआ सुनकर तो देवजानी भाग गई गुस्से से, कहा अपने पिताजी शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य ने अभिशाप दिया है, तू नपुंस बन जाओ, ये क्या करेंगे उनको, जो संभोग की शक्ति समाप्त हो गया, बुढ़े हो गए। तो लेकिन उनको तो भोग करने की बहुत इच्छा था, हाँ बहुत रोने लगे। तो जब तो बाद में तो देवजानी भी देखा कि यार ये मेरा पति बुढ़ा हो गया तो क्या होगा, तो उन्होंने रोने लगे। तो फिर वो शुक्राचार्य जी ने दोबारा कहे कि ठीक है, तुम तुम्हारे जवानी को वापस पाओगे जब भी तुम्हारे किसी पुत्र ने तुम्हारे जवानी को उसका जवानी तुमको दे देगा। तो महाराज जजाति ने भी पूछे, सबसे बड़ा पुत्र को पूछे इसको जदू को, वो बोला क्यों दूंगा, आप मेरे जवानी लेकर करना के या आपको यदि भक्ति करते तो मैं दे देता हूं, तो भक्ति नहीं करोगे, मेरे जवानी लेके आप क्या करोगे, मैथुन सुख इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगोगे, इसके लिए नहीं, मैं तो भक्ति में लगा हुआ हूं, मेरे जवानी मैं आपको क्यों दे दूं, मना कर दे। बड़ा भाई मना करते थे, बीच वाले जो दो भाई वो भी मना कर, बड़े भाई की जैसे ये लोग रहते हैं वो मना करते, छोटे भाई। लेकिन छोटा पुत्र कौन था? जदु। इसने सॉरी कुरु, छोटा बड़ा पुत्र था जदु और छोटा पुत्र था कुरु। कुरु ने अपना जवान को दे दिया पिताजी। लेकिन जब बहुत हजारों साल इंद्रिय भक्त करने के बाद महाराज जजाति वो कहानी कहते बकरा बकरी की कहानी इस तरह अपने पत्नी देवजानी को सुनाए, समस्या तब समझ गए कि क्या है प्रहलाद महाराज का चर्बी तक चरबना आना, बार बार क्या चीवा हुआ वस्तु को फिर दोबारा खाना, अत्यंत घृणा उत्पन्न हुआ उनको, संसार कितने जौवन जीवन प्रति थे, उन्होंने कहा बकरा और बकरी की कहानी कह के देवजानी को विरक्त हो जाते, कौन महाराज जगाति। तब उन्होंने देखे कि ए बेटा मेरा बात सुना था, इसलिए पूरे पूरे विश्व के सम्राट किसको बना दिए, वो हैं गुरु को बना दिए, और जो दो छोटे राजा बने उनका अधीनस्थ राजा होकर मथुरा में शासन किए। यदि वो बड़ा पुत्र थे, जैसे कभी कभी राजा भी अपना मर्जी से किसको छोटा को भी बड़ा बना एकदम ऊपर उठा देता है, यदि कोई पिताजी की बात सुना, लेकिन ऐसा करना सही है। यदि हम देखते हैं कभी कभी छोटा ऊपर उठता है, लेकिन जब बड़ा स्वेच्छा से छोटा को दे देता है, जैसे आप देखेंगे ब्रज के राजा थे कौन, पर्जन्य, पर्जन्य राजा थे ब्रज के, पर्जन्य के पांच पुत्र थे, उनमें से कौन कौन थे, उपनंद सुनंद नंद नंदन और अभिनंद, ऐसे पांच भाई थे। नंद महाराज कौन सा लड़का थे, बड़े थे, बीच वाला लड़के थे, लेकिन उपनंद को राजा बना गया, जब वो शरीर में वानप्रस्थल एक भजन करना चाहे तो पर्जन्य महाराज, पर्जन्य ने नंद महाराज को ही सम्राट बनाया, पूरा नेशन ही राजा बनाया, पूरा ब्रज की है, वैश्यों के राजा, ब्रज के राजा बनाए। लेकिन बड़े भाई ने बड़ा प्रेम करते थे किसको, नंद महाराज, सारे भाई नंद महाराज को ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उनके पास में योग्यता बहुत था, वो महान भक्त थे भगवान की। तो सब देखिए सभी भाई लोग ने परामर्श किया, तो बड़े भाई कहेंगे उपनंद कहेंगे नहीं, जिस दिन उनके राज अभिषेक हो रहा था तो उन्होंने स्वयं अपने मुकुट को निकाला, निकाल के अपने छोटा भाई किसको, नंद महाराज को पहना दिया, कहा कि मैं सम्राट होने की प्रकृति में, राजा होने की ब्रज की योग्य नहीं हूं, हम सभी भाई सभी लोग कैसा हो गया, ये क्या हो गया है, किसको सम्राट पद दिया जाता है, स्वयं छोड़ के दूसरे दे देता है, राजा के पद दिया जा रहा है। लेकिन उपनंद ने कहा कि नहीं, मेरा नाम ही उपनंद, उपकार था छोटा असिस्टेंट, कहता ना तो राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, राज्यपाल उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो इसका असिस्टेंट ना उससे छोटा, इसलिए पहले मेरा नाम ही उपनंद, इसलिए जिसके नाम नंद है वही राजा बनेगा, ये कहकर बड़े स्नेह से अपने मुकुट को लेकर आज मुकुट को पहना दिया किसको, नंद महाराज को, तब नंद ब्रज के राजा बने। भाइयों के बीच में ऐसे स्नेह सौहार्द्य होना जरूरी है, तो कभी कभी योग्यता होने पर भी बड़े भाई अपने स्वेच्छा से फिर नहीं, छोटा भाई को भी सब राजा बना सकता है। लेकिन यहां पर जैसे स्नेह था उपनंद के, नंद महाराज के प्रति जैसे स्नेह था, ऐसा स्नेह था विजितास्तु के अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह इतनी स्तर पर था कि थोड़ा कम था, है इतना ही था उपनंद और नंद के, जो उपनंद के अपने छोटे भाई ने नंद के प्रति, नंद महाराज के प्रति जितने स्नेह था, तो विजितास्तु के स्नेह अपने छोटे भाई के प्रति इसी लेवल के था, न कम बेसी था, क्योंकि अपना पूरा पद दे दिया था उपनंद ने, संपूर्ण राज मुकुट लेकर पहना दिया नंद महाराज को, और उनकी उनके अधीनस्थ होकर कार्य करने के लिए तैयार हो गए। कभी कभी ऐसे भाइयों में स्नेह होने के कारण भातृभ्य भातृवत्सल, भाइयों के प्रति स्नेह, स्नेह होने से कभी ऐसे ही भी पुरुषभानु जी की भी जो महाभानु के जो पुत्र थे, पांच पुत्र, उसमें भी पुरुषभानु जी बीच वाले पुत्र थे, उनको इस प्रकार के उनके बड़ा पुत्र उन्होंने भी इनको दे दिया था राज शासन किसको, पुरुषभानु जी। कभी कभी ऐसा ही भातृभ्य भातृवत्सल, भाइयों के बीच में से स्नेह सौहार्द्य रहना स्वाभाविक होना चाहिए, जिसके पास में योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वही प्रकृत में शासन के अधिकारी होने से प्रजा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद ने भी अंतिम समय में हमें कह के गया कि कहे कि गए कि मैं जब अंतर्ध्यान हो जाऊं, मैंने लीला में प्रवेश कर जाऊंगा नित्रीला में, तभी आप जो इस कर्म में सब जुड़े रहे हो, आप सभी भाई भाई हो, है भाई बहन सब मिल की रहना, और आप मैं जाने के बाद आप परस्पर में मिलजुल कर कैसे ये संस्था को, प्रचार को आगे बढ़ा रहे हो, वही प्रकृति में आपका प्रमाण होगा कि तो आप मुझे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हो। इसलिए वस्तुतः हम तो सभी भगवान का ही पुत्र है, किसके पुत्र है, भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही प्रत्येक जीवात्मा हूं, एकमात्र बीज प्रदा पिता हूं, तो प्रत्येक जीवात्मा के संपर्क क्या है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रव्य, तुम्हें वो सर्वन, तो भगवान को जो पिता मांगे, पिता मान लिए हम लोग, वो हमारे एकमात्र पिता है, तो हम परस्पर में क्या संपर्क है, सभी उन्हीं के संतान है, कि पिता के संतान है, ले भाई भाई संपर्क है, संपर्क है, हैं भाई बहन सभी सभी आप प्रकृति है, कोई पुरुष है इसमें, पुरुष एकमात्र कृष्ण, भगवान एकमात्र पुरुष है, अभी तो हम शरीर ऐसे मिलेंगे किसको पुरुष का शरीर, किसको स्त्री का शरीर, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला, परमानेंट ऐसे रहने वाला नहीं है, है? स्त्री पुरुष आसक्त होगा तो अगला जीवन में फिर उसको पुरुष का शरीर, पुरुष स्त्री आसक्त होने से अगला जीवन में नेक्स्ट बार स्त्री का, उसको आगे समझा जाएगा, प्राचीन वैश्य कथा आएगा। महाराज जो विजेतासु की जो रानी थी उसकी नाम क्या क्या थी, विजेतासु की जो पत्नी थी शिखंडिनी, शिखंडिनी दो रानी थी उनकी, एक तो शिखंडिनी, शिखंडिनी के तीन पुत्र हुए पावक पावनाश्च, पावक पवमान सूची, तीन पुत्र ये अग्निदेव ही, ये पहले अग्निदेव की पोस्ट संभालते थे लेकिन वशिष्ठ के अभिशाप से तीनों आदि पुत्र बन गए थे उनकी शिखंडिनी की गर्व से महाराज अंतर्ध्यान या विजेतासु के पुत्र बने थे, लेकिन ये तीनों संसार के प्रति वैराग्य होकर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इनके दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी नभस्वती, इनके दूसरी पत्नी थी महाराज विजेतासु के, तो उनकी गर्भ से एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम था हबीरधान। तो हबीरधान के पुत्र फिर आगे बनते हैं प्राचीन वही, प्राचीन वही के पुत्र थे, प्राचीन वही की कथा जिसको नारद मुनि ने समझाया सारे कि संसार कैसे, महाराज पुरंजन की कथा कहकर सुनाया था। तो प्राचीन वही के ही फिर 10 पुत्र थे, उनके नाम क्या था, प्रचेता। और प्रचेताओं के ही भगवान शंकर जी ने उनकी वॉलंटरली गुरु बन गए, उन्होंने गुरु नहीं, इन्होंने ये लोग पिताजी को आदेश दिया कि जाओ तुम लोग को प्रजापाल प्रजा सृष्टि करने में उनसे सहायता करना, इसलिए उन्होंने जानते थे ब्रह्मचर्य पहले पालन करना है, इसलिए वो जाकर समुद्र में बैठकर जब जो तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश करने वाले थे तभी भगवान शंकर जी ने उनके समक्ष में प्रकट होकर उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे, रुद्रगीत के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसी अध्याय के नाम ही रुद्रगीत है। तो आगे बहुत आगे प्रारंभ होगी, अभी तक तो वंशावली की शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए वहां पर भी हम देखेंगे कि शंकर जी ने ये प्रचेताओं के प्रति क्यों इतने प्रसन्न होकर उनके गुरु बन गए, अपने आप गुरु बने, इनको आकर उपदेश देने लगे। उन्होंने जब देखे कि ये 10 भाई भी परस्पर में मिलजुल के रहते हैं पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए, ये परस्पर में लड़ते नहीं है, किसी किसकी कोई मन में कोई भावना कुभावना नहीं है कि मैं आगे बढ़ूंगा ये करूंगा कि मैं राजा बनूंगा, फिर ऐसे भावना नहीं था। 10 भाई 10 प्रचेता परस्पर में मिलजुल कर काम करते थे पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए, उनके मन में भातृवत्सल परस्पर में भाई भाई के बीच में स्नेह होने के कारण महाराज ने सभी स्वयं भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए, वैष्णव मानव कथा समझ प्रकट होकर उन्होंने इनको भक्ति सिखाने लगे। इसी प्रकार हम देखें कि भगवान भी प्रचेताओं के सामने प्रकट हो गए, उन्होंने वही बात कहा, भगवान ने भी कही कि मैं क्यों तुम लोगों को प्रति प्रसन्न हुआ, क्योंकि आप जो 10 भाई हो आपके मन में कोई कपट व किसी प्रकार की हिंसा द्वेष किसी भावना नहीं है, आप सभी परस्पर में मिलकर भक्ति करने में जुड़े हो 10 भाई, इसलिए मैं भी आपकी भक्ति में प्रसन्न होकर आपके सब समक्ष में प्रकट हुआ। तो इसी प्रकार यदि आप परस्पर में मिलजुल के रहते हैं तो हमारे मन में हिंसा नहीं होता बा परस्पर में स्नेह भाव रहता है, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास जन्म है, ऐसे यदि भावना हमारा मन में भी रहेगा, परस्पर में स्नेह भावना रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, और फिर हम कुरुकुल जी बंद करेंगे, तो फिर ऐसे ही यदि हम परस्पर में मिलकर केवल प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस धर्म में रहकर प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तभी कृष्ण कृष्ण बलराम भी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। ये इस प्रसंग से हमको सीखना भातृभ्य भातृवत्सल, परस्पर में भाइयों में स्नेह होना चाहिए, हमेशा ही इसका ये इसका कुछ चला है उसका चला है उसका चला है ये गुरु का चला है, इसे सब अलग अलग ग्रुप बनाकर इस दिन में फिर असली जो सब जो इच्छा प्रभुपाद जी को उसको यदि हम नेग्लेक्ट करेंगे कृष्ण हमारे प्रति प्रसन्न नहीं होंगे। गोड़िया मध्य से टुकड़े टुकड़े का भक्ति सरस्वती ठाकुर जाने के बाद गोड़िया मध्य से टुकड़े टुकड़े से हो गए अलग अलग, वो भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रसन्न नहीं किया। तो उसी प्रकार इस दिन में भी प्रभुपाद जी ने चाहते कि सभी लोग मिलजुल कर ये संस्था को आगे बढ़ाए, क्योंकि आंदोलन कितने साल तक चलने वाला है, रूपा जी ने कही कम से कम 10,000 साल तक ये आंदोलन चलते रहना चाहिए, घोर कली प्रवेश करने के पहले जब तक है तब तक ऊपर मेरा किताब 10,000 साल के लिए है। इसके में बहुत किताब लिखने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक की स्वतंत्र स्थिति है, है? क्योंकि ये पुस्तक स्कन के लिए लॉ बुक है, ये किसी बद्धजीव के द्वारा लिखा नहीं गया है। जर्नलिस्ट के जो सांबादिक ने एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी आप इतनी सुंदर इतनी अच्छी पुस्तक किसे लिखे, इतने कैसे लिखे आप इतनी बहुत सुंदर पुस्तक लिखे। प्रभुपाद जी कहे कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग आई वाज राइटिंग, जैसे व्यासदेव जी ने बोल रहे थे लिख रहा था कौन, गणेश जी लिख रहे थे। प्रभुपाद जी कहे तीन बात है, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग आई वाज राइटिंग। संवादी घर बोले कृष्ण इज गॉड, सो हाउ गॉड वाज स्पीकिंग एंड यू राइटिंग हाउ, वो थोड़ा घाव लेने के लिए प्रभुपाद जी जो सेक्रेटरी थे तमाम कृष्ण महाराज उन्होंने देखिए साइलेंट हो गया तो कोई कुछ बोलता नहीं, तो उन्होंने कहे कि एक्चुअली कृष्ण रिजाइडिंग इन एवरी वन हार्ट एज ए सुपर सोल, सो ही वॉज ऑल्सो रिजाइडिंग इन आवर हार्ट ऑफ आवर गुरु महाराज प्रभुपाद, सो विद इन तो कृष्ण वॉज गिविंग हिम इंटेलिजेंस एंड ही वॉज सो कृष्ण लाइक दिस प्रभुपाद राइटिंग। प्रभुपाद डोंट नो, डोंट स्पेकुलेट, आई डू नॉट से दिस, यू नो कृष्ण वॉज प्रॉम्प्टिंग आई वॉज आप जाना कि प्रभुपाद की स्थिति क्या है। प्रभुपाद स्वयं अपनी किताबों को पढ़ते थे, स्वयं लिखते थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपनी पुस्तक को स्वयं पढ़ते थे, फिर शिष्य को बुलाकर बोलते थे अरे ये पुस्तक मैं लिखा, कैसे नहीं सुंदर पुस्तक लिखा पता है। स्वयं प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक फिर पढ़ी फिर आश्चर्यचकित रहते थे ऐसा किताब कैसे लिखा है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ से ही प्रभुपाद ने कहा था कि जो आध्यात्मिक विषय के ऊपर कोई किताब लिखना चाहता है उसको चार भौतिक जीव ने जो बद्ध जीव के लक्षण से मुक्त होना चाहिए, धोखा देने की प्रवृत्ति चिटिंग प्रोपेंसिटी, अपूर्ण इंद्रियां, माया के द्वारा मोहित होना और क्या है
गलती करना
टू कमिट मिस्टेक। हमसे दुनिया में दिन में कितनी बार मिस्टेक होता है, कुछ करते कोई भी कार्य करते मिस्टेक होते रहता है। एक मुक्तात्मा के पास में ये चारों गुण दिखाई नहीं जाता, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ने वो गद्य की जो किताब लिखना है आध्यात्मिक विषय के ऊपर कृष्ण के बारे में जुट गया तो फिर उसको चारों कमी से मुक्त होना चाहिए। जब तक हमारे पास में चारों कमियां हैं कोई भी एक हमारे चरित्र में है दिखाई पड़ता है तो फिर हमें किताब नहीं लिखना चाहिए। हम जो किताब लिखेंगे उसे जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा, जो हमसे मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक रहेगा है बद्ध जीव के पास। इसलिए प्रभुपाद जी की किताब जो है ये समस्त बद्ध जीव के लक्षण है ये सब मुक्त है, प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त की मुक्तात्मा के द्वारा भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखा गया है। इसलिए तात्पर्य को स्वयं भगवान ने स्वीकार किया तभी तो किताब के इतने प्रचार हो रहा है, और नहीं इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ने से हमारा अनर्थ नष्ट होंगे, हम फिर उसी स्थिति को मुक्तात्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं मुक्तात्मा नहीं है अभी तक बद्ध जीव का कोई ना कोई लक्षण उनके पास में है तो उनकी पुस्तक पढ़ने से हम इतनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। आज वो किताब पढ़े फिर दूसरे फिर वही पुस्तक पढ़ा फिर 10 साल के बाद उनके आइडिया चेंज हो जाता है, फिर उनकी पुस्तक फिर शिष्य को लेकर जला देते हैं, तो ऐसे पुस्तक पढ़ने से क्या फायदा है। जिसी प्रकार भगवत गीता हजार हजार साल तक रहने वाला है कृष्ण के द्वारा बताया गया, व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ लिखे उनकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार जो मुक्त आत्मा है जो प्रभुपाद जी ने जैसे कृष्ण के बारे में जो पुस्तक लिखी गीता भागवत ये भी ऐसे 10,000 साल तक चलने वाला है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद पुस्तकों की स्थिति स्वतंत्र है और इनको पढ़ना और इनको वितरण करने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की जो इच्छा था कि हम सब मिलजुल के रहे और पूरे विश्व के मूवमेंट जो इस्कन के जो मूवमेंट ये 10,000 साल तक चलते रहे और इस कलि इसी महाप्रभु के जो सुवर्ण जो चल रहा है तो इसी में ही कलि हत मनुष्य सभी भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चले जाए, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। ये प्रभुपाद ने समस्त कृष्ण जिस प्रकार सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानतमां शांति रुच्यति भगवान कहे मैं ही समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वरूप मित्र है, इसी को जो जानता है वही प्रकृति में सुख और शांति को उपलब्धि करता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने भी अपने प्रत्येक पत्र में, किसी के पास भी कोई पत्र लिखते थे अंत में क्या लिखते थे, योर एवर वेल विशर है, मैं तुम्हारे एकमात्र शुभ चिंतन हो, एवर योर एवर वेल विशर। तो अभी कोई लिखने का ऐसा हिम्मत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा योर एवर वेल विशर है। अभी कोई गुरु होने पर भी फिर हमने शिष्य के प्रति उसको अधिक स्नेह रहता दूसरे से, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे सब सभी के लिए मैं सभी के एवर वेल विशर, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रभुपाद जी इतनी स्नेह था जितने उनके शिष्य के प्रति भी था। कोई बात साइंटिस्ट को गाली देते थे, यू रास्कल नॉनसेंस डोंट नो एनीथिंग, इसका नहीं प्रभुपाद जी ने उनको कोई घृणा से का कुछ हिंसा से बोलते नहीं, इसको जानता नहीं है जैसे पिताजी अपने बच्चे को डांटता है। इसलिए प्रभुपाद जी कितने बड़े बड़े प्रोफेसर को और डॉक्टर ने कितने साइंटिस्ट को ऐसे कह सकते थे, नॉन सेंस रास्कल, हम ऐसे कहेंगे तो थप्पड़ लगे, क्योंकि हमारे पास में उस स्तर की करुणा नहीं है जिस तरह प्रभुपाद जी के स्तर पर जैसे करुणा बद्ध जी उनके प्रति, हमारे पास में वो करुणा भावना नहीं है। हमारे जो कुछ कार्य करते हैं उसके बीच में सूक्ष्म रूप से पूजा मान प्रतिष्ठा छुपे रहता है, चतुर भाव से प्रतिष्ठित होना, सम्मान प्राप्त करना, ये सब इच्छा अंत में रहता है। प्रभुपाद जी ने जो कार्य करते थे उनके बीच में ये नहीं था, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा से संपूर्ण मुक्त थे। तो इसलिए हमें भी सीखना चाहिए कि ये प्रसंग से कि कैसे भाई 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 बनकर सब मिलजुल के रहना संस्था को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ऊपर की जो इच्छा है 10,000 साल तक ये संस्था चले हैं इस्कॉन सोसाइटी, और बद्ध जीवन की उद्धार हो जाए, बलि के प्रभाव से मुक्त होकर 10,000 साल के अंदर में सभी भगवत धाम चले जाए। तो इसी इच्छा को प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सभी प्रयास करना चाहिए, कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ग्रुप जी में गुपी जी में नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि मैं नित्यालय में प्रवेश करने के बाद आप सभी मिलजुल कर ऐसा एक कार्य प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहो, इसी से ही आप प्रमाण करोगे कि आप सब मुझे प्रेम करते हो। ठीक है, हरे कृष्ण। वे प्रश्न है किसकी,
बड़ा एक क्वेश्चन था।
हाँ,
वो जो गुरु ने जो अपने जो उनको दे दिया वो वाटर का बुद्धा बन गया,
नहीं बुद्धा बन गया था, फिर भी वो जगह जो सत्य जो नित्य वो बार कुछ चले गए तो अपने उम्र पर उसको वापस कर दिया। सत्य युग में जो परमायु 1,00,000 साल होता है, 1,000 साल तक उन्होंने बोला कि आपको इतने